ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रक्षा क्षेत्र में भारत की तकनीकी प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास की। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने स्वदेशी तकनीकों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे न केवल हमारी सुरक्षा क्षमताएं बढ़ी हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह हमारे देश वैश्विक स्तर पर रक्षा परिदृश्य में एक मजबूत खिलाड़ी बन रहा है। हाल ही में हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसने हाल ही में प्रतिष्ठित महारत्न स्टेटस हासिल किया है। अजय जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि महत्वपूर्ण स्टेटस मिला है महारत्न, क्या होता है और कितना महत्वपूर्ण है?
देखिए, पहले तो महारत्न स्टेटस जो होता है, 1997 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू करी नवरत्न स्टेटस
जी
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए। अब थोड़ी देर पर गवर्नमेंट ने रियलाइज करा कि नवरत्न में कई सारे लोगों ने अच्छा काम किया, नवरत्न में से कई आगे चले गए, उनको महारत्न का स्टेटस दिया जाए। अब जो आपने भी बात करी 14 कंपनियां हैं उसके अंदर, एक आपके श्रोताओं को अहम बात बताता हूं मैं, उन 14 में से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL पहली रक्षा क्षेत्र की कंपनी है। बाकी सब पेट्रोलियम की कंपनियां हैं, पावर की कंपनियां हैं, जो प्रोडक्शन करती हैं, रिफाइनरिंग करती हैं या एक कमर्शियल प्रोडक्ट बेचती हैं
जी।
उसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भी है जो हैवी इंडस्ट्री के अंदर आता है, कोल इंडिया है जो मतलब प्रोडक्शन डेली मैटर का प्रोडक्शन का। वो रक्षा उद्योग की जो अहमियत है वो ये है कि हाल पहली कंपनी है उन 14 कंपनियों में जो रक्षा उद्योग से आती है। प्रोडक्शन का मामला है, जो कि प्रोडक्शन भारत में और विदेश में हर जगह उस हाल का प्रोड्यूस्ड इक्विपमेंट बाहर जा रहा है, तो इसकी अहमियत तो पहली बात ये है। अब भाई हाल ने कैसे ये करा है? हाल एक बढ़ती हुई कंपनी थी आज से 60-70 साल पहले भी, मगर आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक लिबरेशन हुआ 1991 में हुआ, उसके बाद से प्रगति पकड़ी 2014 के बाद और प्रगति पकड़ी। अब देखिए, पिछले साल हाल का जो टर्नओवर था वो तकरीबन 28,162 करोड़ था। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंदर तकरीबन 16 पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, उसमें से हाल एक है। और टोटल जो मान लीजिए भारत की जो जिसे कहते हैं वैश्विक या अपने आप प्रोड्यूस करी गई रक्षा उद्योग के मामले में जो हमारे इक्विपमेंट प्रोड्यूस हुए हैं, वो तकरीबन पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1,27,000 करोड़ के आसपास की प्रोडक्शन थी हमारी। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे इन आंकड़ों से और ये महारत्न स्टेटस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की रक्षा प्रोड्यूसिंग प्रणाली या इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग प्रणाली में ये एक अहम कदम है।
अभी आपने जिक्र किया कि डिफेंस क्षेत्र की इकलौती कंपनी है इन 14 में से, तो HAL के क्या महत्वपूर्ण कारण रहे इसके पीछे जो इसको महारत्न स्टेटस मिला और क्या क्राइटेरिया होते हैं?
देखिए, पहली बात तो ये कि HAL को महारत्न स्टेटस मिलने से सबसे बड़ी बात ये होगी कि उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी जब वो किसी से नेगोशिएट कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं तो उनकी जो क्षमता है, जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द मनी, मान लीजिए 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नेगोशिएट हो रहा है, 5,000 करोड़ का नेगोशिएट हो रहा है, 16,000 का हो रहा है, तो उनकी नेगोशिएटिंग पावर अपने स्तर पर बढ़ जाएगी। रक्षा मंत्रालय इस कंपनी की मैक्सिमम शेयर होल्ड करता है, एक जैसे आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में HAL लिस्टेड कंपनी है, रक्षा मंत्रालय इसके मैक्सिमम शेयर होल्ड करता है, मगर उनके पास अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा उसके पास एक क्षमता बढ़ेगी नेगोशिएशन की, खुद डिसीजन लेने की क्षमता, फाइनेंशियल डिसीजन लेने की क्षमता, जिससे एक इसकी प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि हर बात बेंगलोर से यहां दिल्ली फाइल आएगी, फिर उसका फैसला होगा, फिर फाइल वापस जाएगी दिल्ली से बेंगलोर। हाल आप जानते हैं बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है, इससे एक स्पीड बढ़ जाएगी, सबसे पहली बात तो हाल की। दूसरी बात यह कि हाल ने अभी 3-4 बड़े काम किए हैं जो कि आगे लोग उनको देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर बनाते हुए एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसको हम ध्रुव के नाम से जानते हैं, उसके कई सारे वर्जन हैं, अटैक वर्जन है, मरीन वर्जन है, लैंड वर्जन है और कई सारे उसमें वर्जन आते हैं। करीब 300 हेलीकॉप्टर हाल बना चुका है जो भारत की चारों सेनाओं के पास है, कुछ एक्सपोर्ट हुए हैं और एक्सपोर्ट की मार्केट अब उसकी क्षमता बहुत अच्छी तरीके से देखी जा रही है। और सिविलियन मार्केट में भी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट, जैसे आप जानते हैं पहाड़ों में कई जगह लोग ते हैं, केदारनाथ जी गए या वैष्णो माता जी गए, तो हेलीकॉप्टर का यूज बहुत है। तो ALH जो है जो हाल का, उसका अब एक और डोर्नियर विमान है छोटा उनका, जो कि उड़ान स्कीम है भारतीय गवर्नमेंट की, उड़ान स्कीम छोटे एयरपोर्ट, छोटे शहरों को छोटे शहरों से कनेक्ट करने की, तो उड़ान स्कीम के अंदर डोर्नियर 228 एक प्लेन है जो हाल बनाता है, वो प्लेन भी अब सिविल फ्लाइट में यूज होता है। तो ये हाल की ये प्रोग्रेस है रक्षा के अलावा।
HAL भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में क्या भूमिका निभाता है?
पहली बात तो देखिए, सुखोई विमान का नाम आप सभी श्रोताओं ने सुना है, तो सुखोई विमान उसमें से तकरीबन 140 के करीब विमान करीब भारत में बने हैं, लाइसेंस प्रोड्यूस हुए हैं। तेजस विमान का नाम सभी श्रोताओं ने सुना है, तेजस तकरीबन 200 प्लेन का बनाने का ऑर्डर हाल को रक्षा मंत्रालय दे चुका है, हाल करीब 40 डिलीवर कर चुका है। और ये प्लेन आप जानते हैं भारत की एक इंडिजिनस कैपेसिटी की एक बहुत बड़ी क्षमता मानी जाती है। हेलीकॉप्टर का मैं बता चुका हूँ, 300 हेलीकॉप्टर बना चुके हैं, वो 1,000 हेलीकॉप्टर और बनना है, वायुसेना के लड़ाकू विमान तकरीबन 400 बनने हैं, अभी 40 बने हैं, 400 बनने हैं। उसके अलावा हाल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो जब ये प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, हाल तकरीबन 10-12 यूनिट हैं, रिसर्च यूनिट हैं, और तकरीबन 20 फैक्ट्रियां हैं ऑल ओवर द कंट्री। उनकी कैपेसिटी जो है इन प्लेन से, हेलीकॉप्टर से, और इनकी प्रोडक्शन से और एक्सपोर्ट से, और भारतीय वायुसेना और नौसेना और थलसेना के बढ़ते हुए इन यंत्रों के उपयोग से बढ़ रही है।
HAL आत्मनिर्भर भारत की पहल, आत्मनिर्भर की बात की जाती है, मेक इन इंडिया की बात की जाती है, तो इस पहल में कैसे आगे बढ़ के योगदान दे रहा है, और विशेष रूप से AL-31FP एरो इंजन के साथ अगर देखें।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, जो AL-31FP इंजन है ये सुखोई विमान में इस्तेमाल होता है। अभी तक जैसे आप जानते हैं, रूस और यूक्रेन के झगड़े में हमें सबसे नुकसान हुआ है कि वहां से सप्लाईज रुकी हुई है। जब सप्लाईज रुकी हुई है तो इंजन एक सुखोई विमान के अंदर हमारे पास करीब 270 सुखोई है, हर सुखोई में करीब 2 इंजन लगते हैं, तो मान लीजिए 500 इंजन तो आपको रनिंग में चाहिए। उसके अलावा कुछ खराब हो गया, कुछ एक्स्ट्रा इंजन चाहिए, कुछ रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए, तो आपको 600 इंजन चाहिए। अब जो पुराने वाले सुखोई के इंजन पुराने और उनके इंजन की एक लाइफ होती है। जो ये इंजन है, अब पहली बार भारत में बनके पहला इंजन हाल ने वायुसेना को दे दिया है। अब ये इंजन फिट होते हैं प्लेन में, नया का नया हाल में बनेगा। इसकी जो इंडिजनाइजेशन है, कि भारतीयकरण है या आत्मनिर्भरता कह लो, वो तकरीबन 40% पार्ट्स अभी इंडिया से प्रोक्योर हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने इनको एक टारगेट दिया है कि 55% पार्ट्स आने वाले 3 या 4 साल के अंदर उस इंजन के अंदर भारत से आएंगे।
भारत अब डिफेंस में भी एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है, तो HAL और तमाम इस तरीके की कंपनीज किस तरीके से उसमें योगदान दे रहे हैं?
पिछला जो वित्त वर्ष गया, मार्च 24 में खत्म हुआ, उसमें तकरीबन 21,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट हुआ है भारतीय रक्षा उद्योग का। उसमें ब्रह्मोस एक बहुत बड़ी मिसाइल है, आपके श्रोताओं ने नाम सुना, ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट है। बहुत सारे छोटे पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, असेंबलीज हैं, जो कि हम और कंट्रीज को सप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्री, ये कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, कोई करीब 74 कंट्री को हमारी एक्सपोर्ट होती है, छोटे छोटे स्तर पर है। अभी 21,000 करोड़ अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कुछ बड़ी बात नहीं है, मगर एक हमारे जैसा कंट्री जो सारा कुछ इम्पोर्ट करता था और अभी भी काफी सारी चीजें इम्पोर्ट करता है, उसमें 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होना, मेरे को ऐसे दिखता है आने वाले 10-12-15 साल के अंदर हम एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर होंगे रक्षा के इक्विपमेंट के।
डिफेंस सेक्टर में हम चर्चा कर रहे हैं और डिफेंस सेक्टर का खासा हमने मजबूती देखने को मिली हमें इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि श्रोताओं को आप बताएं कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा तकनीक कैसे विकसित हुई है, क्या क्या उसमें तमाम बदलाव आए हैं।
सबसे पहली चीज, हमारा जो तेजस विमान बन रहा था वो आपने देखा है कि इंडिजिनस वो बन के तैयार है, इंडक्ट हो गया। हेलीकॉप्टर बनने शुरू हुए थे, एक लंबा प्रोसेस होता है। मैं आपके श्रोताओं को समझा दूं, ये कोई स्कूटर बनाने की बात नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस होता है, 20-22 साल लगते हैं जस्ट R&D में। आप इंजन बना रहे हैं, उसके R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टाइम लगेगा, 10-12-15 साल लग जाते हैं। अब जैसे हेलीकॉप्टर बन गया है, ठीक है, और जैसे आपने पूछा आगे प्रोग्रेस क्या है, एक प्लेन हम बनाने वाले हैं, उसका नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो दुनिया में सबसे आधुनिक फाइटर जेट होगा, वैसे ही जेट होगा, उसका इंजन भी और यहीं सब कुछ बनेगा। अब उसकी काम दे दिया गया है आडा को, एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को, और हाल उसको बनाएगा लास्ट में। और तेजस मार्क 2 एक नया प्लेन बन रहा है, और तेजस की ही वो प्रोग्रेस है आगे। अब इन चीजों के लिए क्षमता चाहिए, शक्ति चाहिए, पैसे चाहिए और दृढ़ निश्चय चाहिए। पहली चीज हो गई हेलीकॉप्टर, दूसरी चीज हो गई प्लेन्स, टैंक्स हम खुद बना रहे हैं, और बहुत सारी आर्टिलरी गन्स जो हम इंपोर्ट करते थे, जैसे बॉफर्स का नाम आपके सभी श्रोताओं ने सुना होगा, वो इंपोर्ट हुई थी, उसके बाद से हमने कुछ इंपोर्ट नहीं करा है, अपने आप ही खुद ही बना रहे हैं। एक स्पेशलाइज्ड गन इंपोर्ट जरूर हुई थी, 145 गन इंपोर्ट हुई थी, उस स्पेशलाइज गन है वो दुनिया में एक ही कंपनी बनाती है, और उस टेक्निक को बनाने के लिए आपको कई साल लग जाते, तो उससे अच्छा इंपोर्ट ही कर ले, नो प्रॉब्लम। अब जो आप खुद बना रहे हैं उसमें जो चीजें हैं, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि डोर्नियर प्लेन, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, और नेवी के जितने भी जंगी बेड़े हैं, जितने भी वॉरशिप हैं, वो सारे इंडिया में बनते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी आपके श्रोताओं को बता दूं, एक समुद्र में चलता हुआ जहाज जिसके ऊपर से फाइटर जेट टेक ऑफ कर सकता है और लैंड कर जाता है उसी जहाज के ऊपर, समुद्र में वो तैर रहा होता है उसी टाइम, उसको एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जाता है। वो भी अब इंडिया में ही बना है, पिछले अगस्त 2022 में उसका प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास, उसको मतलब इनॉग्रेट करा था, उसको कमीशन किया था। तो इतनी चीजें बन रही है, तो आपके सामने एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में 6 लोग बनाते हैं, परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी हम बनाते हैं, अभी एक नई दूसरी परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी कमीशन हुई है, तो दुनिया में 6 कंट्री बनाते हैं परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट कैरियर, तो हम उन 6 मुल्कों में हैं, तो आपके श्रोता अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत का, तो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत जो है, इस तरीके की पहल ने देश में रक्षा निर्माण परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया है?
डिफेंस सेक्टर, मेरा ये मानना है कि आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी कड़ी है। अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, सारे श्रोताओं ने बोइंग का नाम सुना है कि बोइंग प्लेन बनाता है, बोइंग का बहुत सारा एक कंपोनेंट उनका रक्षा में जो उनका डिफेंस इक्विपमेंट उससे आता है। एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, 63-64 बिलियन डॉलर का कारोबार करती है, कई मुल्कों का रक्षा बजट नहीं जितना उनका कारोबार है। अब वो सिर्फ मिलिट्री के इक्विपमेंट बनाते हैं, रडार बनते हैं, ये सब चीजें, जैसे मान लीजिए रेथियन के रडार हैं, अब कहने को रेथियन अमेरिकन कंपनी रक्षा उद्योग की कंपनी है, नहीं, उनके रडार सारे एयरपोर्ट्स में दुनिया भर में लगे हुए हैं। तो वो एक डुअल यूज पर्पज की चीजें होती हैं। अगर आपको विमान वाहक पोत बनाना आता है नेवी के लिए, वॉरशिप बनाना आता है, तो मान लीजिए आपको वॉरशिप शिप भी बना देंगे, वो जाहिर सी बात है। तो ये एक डुअल यूज चीजें होती हैं, जो कि जब आपका रक्षा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा, उसकी जब ग्रोथ होगी, जैसे अमेरिका के मैंने एक उदाहरण दिया आपको, बोइंग रेथियन के, उसके साथ साथ उसके स्पिन ऑफ होते हैं सिविलियन सेक्टर में, जो कि ये स्पिन ऑफ देखने को मिलेंगे, और आपका आत्मनिर्भरता में रक्षा मंत्रालय की कंपनियां और रक्षा उद्योग का जो काम है वो सबसे अहम होगा आत्मनिर्भरता की तरफ जाते हुए।
स्टार्टअप्स की काफी बात की जा रही है आजकल, और भारतीय स्टार्टअप्स का खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और आप आने वाले समय में किन क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करता हुआ देख रहे हैं?
जी, रह के रक्षा मंत्रालय क्या करता है, स्टार्टअप्स को और नए युवाओं को जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको एक चैलेंज देता है, उनको वो चैलेंज बोलते हैं, चैलेंज बोल के उनको बताते हैं कि हमको ये सामान चाहिए, ये हमको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, हमको ये सामान चाहिए, आप बना सकते हैं, और वो फिर चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और वो कई चैलेंज एक्सेप्ट होते भी हैं। बाद में रक्षा मंत्रालय उनका प्रोडक्ट एक्सेप्ट करता है, तकरीबन 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट अब तक एक्सेप्ट किए जा चुके हैं, उनको ऑर्डर दिए जा चुके हैं स्टार्टअप्स को, और इसी स्टार्टअप्स के चलते हुए वो अब जो देख रहे हैं नई प्रणाली, जो कुछ 4-5 दिन पहले भी अनाउंस हुआ था एक चैलेंज, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग। मैं आपके श्रोताओं को बता दूं, कंप्यूटिंग का एक नया तरीका है, जो कि एक सिक्योर मेथड है उसका बात करने का, क्वांटम कंप्यूटिंग बोला जाता है उसको, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब चीजों पे काम हो रहा है, कि जो स्टार्टअप्स को बोला जा रहा है कि ये हमको चैलेंज है, ये पूरा करके दिखाओ। बहुत जटिल काम है, मगर कहना बड़ा आसान है कि ये पूरा करके दिखाओ, मगर आप मान लीजिए कि जो पाश्चात्य मुल्क हैं या नाटो के एलाइज हैं अमेरिका के, वो हमसे टेक्नोलॉजी में कोई 30-40 साल आगे खड़े हैं, जापान और आगे खड़ा है, तो हमको उनको कैचअप करना है और अपनी क्षमता बढ़ानी है, तो ये रोल है स्टार्टअप्स का।
साइबर सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है, तो साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व को देखते हुए आप क्या देखते हैं कि भारत अपनी साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठा चुके हैं और क्या क्या कदम आगे उठाने जाने चाहिए?
जी, सिर्फ रक्षा की अगर बात करें तो देखिए, सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसे बोलते हैं, यानी कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रक्षा के किसी भी अफसर ने या अधिकारी ने बात करनी है, तो वो उनकी अपनी लाइन है, जो हम जो बात करते हैं फोन पे वो लाइन पे नहीं है, वो सेपरेट लाइन है, और वो सिक्योर्ड है, इनक्रिप्टेड होते हैं। मान लीजिए कोई लड़ाकू विमान उड़ रहा है, उसको कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है, वो विमान से लेकर जमीन पे जो बात हो रही है वो टोटली सिक्योर, उसे कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये हमारे अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, कई सारे डेवलप करे हुए हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, रक्षा मंत्रालय की एक और कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उन्होंने बनाए हैं, कुछ साथियों से हमारे जो फॉरेन मित्र हैं उनसे कुछ इंपोर्ट करे गए हैं। ये प्रणाली होती है, मान लीजिए एक समुद्री जहाज है बाहर है, उससे बात कैसे करेंगे आप, 2000 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो एक प्रणाली है बात करने की, कुछ सैटेलाइट से होती है, समुद्री जहाज से, जो लड़ाकू विमान है वायुसेना के, उनसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है विमान और उस कंट्रोलर के बीच में, तो वो टेक्नोलॉजी होती है। अब जैसे मान लीजिए वायुसेना के प्रमुख ने अभी बात करनी है शिलोंग में या गुवाहाटी में, तो वो फोन जब उठाएंगे तो वो सिक्योर लाइन है, साथ में कोई नहीं है, ये तो हो गई उनकी कम्युनिकेशन। साइबर में देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, थ्रेट जो साइबर का जो है अभी, कि बहुत सारी चीजें हैक हो सकती हैं, तो रक्षा मंत्रालय ने तो अपने कंप्यूटर भी अलग कर दिए हैं बहुत साल से, आज से नहीं 20-25 साल से, उनके अलग ईमेल है, आप उनको जीमेल नहीं कर सकते, पेन ड्राइव नहीं, ये सब चीजें 20 साल से वहां पर। मगर आगे जो साइबर की थ्रेट है वो ये है कि अगर सैटेलाइट को आपके गिरा दे तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, सैटेलाइट पर निर्भर है अभी, कुछ सैटेलाइट गिरा दे तो सैटेलाइट की रिडंडेंसीज होती है, यानी एक नहीं होगी, अनाउंस होगा कि एक सैटेलाइट है हमारे पास, दो होंगी शायद, तीन होंगी, पता नहीं कितनी है, किसी को नहीं पता, तो रिडंडेंसी होती है सैटेलाइट की, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की, और ये सैटेलाइट की बेस पे ही, जैसे मान लीजिए हमारे कोई मिसाइल है, लंबी दूरी की मिसाइल, अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, 5000 किलोमीटर दूर जाना अग्नि ने, तो उसको कोई डायरेक्शन दिखाएगी ना चीज कोई, तो डायरेक्शन सैटेलाइट तो उसकी रिडंडेंसी बिल्ड होती है, रिडंडेंसी मतलब कि अगर सैटेलाइट फेल हो जाए तो क्या होगा, तो ये सब चीजें बिल्ट इन है ऑलरेडी रक्षा मंत्रालय के अंदर, उनकी जो नेटवर्क्स हैं वो बड़े सिक्योर हैं। मगर जो बड़ा क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी का, कि वो रक्षा मंत्रालय के बाहर, वो रक्षा मंत्रालय के पास नहीं है, रक्षा मंत्रालय के अपने ही जो नेटवर्क्स हैं सिर्फ उन्हें ही सिक्योर वो कर सकते हैं और अपनी ही कम्युनिकेशन सिक्योर कर सकते हैं।
आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे अजय जी, कि भारत अपनी रक्षा तकनीकों को निरंतर बढ़ा रहा है, पर इसमें क्या प्रमुख चुनौतियां आप देख रहे हैं?
सबसे बड़ी बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी में जब आप पीछे हो तो आप कैचअप ही कर रहे हो अभी अमेरिका से या जर्मनी से या फ्रांस से या जापान से या इसराइल से। जी बिल्कुल ठीक है, कैचअप करने पर कर तो रहे ना, सबसे बड़ी बात कर तो रहे ना जी, जो कि परमाणु मिसाइल दाग सकती हैं और परमाणु ऊर्जा से चलती हैं। हमारी दो और बनाने की कवायद है और दो और ऐसी परमाणु पनडुब्बियां जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल सबमरीन की तरह चले, में उनका फ्यूल जो है वो परमाणु होगा। तो ऐसी चीजों में बहुत सारी तरक्की हमने करी है, राइफल नए बन रहे हैं, आर्टिलरी गन, जैसे मैंने बताया कि हमने बॉफर्स के बाद कोई इम्पोर्ट नहीं करी है, और जहाज फ्लाइट जेट बन रहे हैं, और विमान वाहक पोत जितने जंगी बेड़े हैं नौसेना के सारे इंडिया में बनते हैं। इस टाइम करीब 64 जहाज जो है वो बन रहे हैं नेवी के लिए।
अजय जी, आप आकाशवाणी के साथ शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे रक्षा क्षेत्र में भारत की तकनीकी प्रगति पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।